ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य धनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हम सब लोग राधा विनोदी लाल के मंदिर में बैठे, इतने सुंदर विग्रह हैं राधा विनोदी लाल, इतने सुंदर, इतने मनमोहक, सर्व आकर्षक यही भगवान है। और बाकी सब जितना भी आकर्षक लगता है ना आपको, वो सब भूल भुलैया है, सब टेम्पररी है, अशाश्वत है, आखिर में जाकर दुख देने वाला है। जितना भी चकाचौंध करने वाली वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती है जहाँ मन भागता है, वो सब आखिर में आपको दुख देगी। लेकिन ये वस्तु ऐसी है, अनंत बार आ जाओ, हजारों बार आ जाओ, कभी आपको देखकर आपका मन नहीं भरेगा। इतना सौंदर्य है उनके अंदर, इतने से है लेकिन इतना सौंदर्य है। ऐसे एक मूर्ति आओ वृंदावन में, राधा रमण देव, हाँ केवल बेटा ऐसे उंगली पकड़ो, चार आ जाओ, आगे आ जाओ ना, बोला चार, हाँ चार पकड़ो ऐसे, हाँ ये देखो ये 12 उंगली होगी ना, इतने साइज के हो महेश, अपने तुम कैमरा उधर घुमा रहे हो, 12 उंगली दिखाए नहीं, लो दोबारा दिखाओ, आ जाओ ये देखो ये अंदर रखो, ये इतने साइज के राधा रमण जी हैं, इतने सुंदर है उनका एक एक अंग जो है, इतना सुंदर बना हुआ है कि आप उधर लोग वो लेंस लेके जाते हैं बाइनोकुलर जूम करके उसको देखते रहते हैं, और देखते रहते हैं, बोला वो हटो भी हमको भी देखने दो यार, कितना देखते हो दिल नहीं भरता है उनको देख के। भगवान के अंग जो है ना वो इतने सुंदर हैं, दिव्य अंग हैं, सब जीवों के नेत्रों को परम संतुष्टि दिलाने वाले, इसे राधा बिंदुवली लाल है। उनकी कथा ऐसी है कि पद्मनाभ भट्टाचार्य करके भक्त थे, उस समय बांग्लादेश भारत में था, आज अलग हो गया है, तो उधर बांग्ला में थे वो, उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनको बालक हुआ पुत्र लोकनाथ। लोकनाथ को बचपन से ही दुनिया के किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, किसी भी चीज़ में, हरे कृष्णा, किसी भी वस्तु में उनको इंटरेस्ट नहीं था। यथावकाश बहुत विद्या प्राप्त कर लिया उन्होंने, आध्यात्मिक विद्या शास्त्र और अध्ययन कर लिया, उसके बाद और भी उनकी विरक्ति ज़्यादा हो गई, भगवान के विषय में मग्न हो गए वो। तो फिर जब थोड़े जवान हो गए ना, तो फिर वो नवद्वीप चले गए चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन समर्पित करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित किया उनके चरणों में, वो फिर जाके वहीं पर रहने लगे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान स्वयं नवद्वीप में 24 साल रहे, जन्म से 24 साल तक, दो विवाह हुए उनके, उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन संन्यास लेने के कुछ दिन पहले उन्होंने लोकनाथ जी को बुलाया कि लोकनाथ अभी तुम वृंदावन चले जाओ। बोले क्यों, मैं आपका संग छोड़ नहीं सकता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन बाद मैं संन्यास लेने वाला हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपसे मेरा संन्यास लेने का विधि देखा नहीं जाएगा, मैं सन्यासी वस्त्र पहनूंगा, सर मुंडवाऊंगा और घर छोड़ दूंगा, ये सब चीज़ें आपको सहन नहीं होगी, इसलिए आप वृंदावन चले जाओ। तो फिर बड़े ही कठोर भावना से, दुखी भाव से वो भगवान की आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए। और भगवान ने उनको कहा कि मैं आपको वृंदावन में मिलूंगा, सन्यास लेने के बाद मैं वहाँ पर आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करना वहाँ पर। तो लोकनाथ जी वहाँ से निकले और पूरे भारत की यात्रा कई जगहों की किया उन्होंने, और वो वृंदावन पहुंच गए। जब वो वृंदावन पहुंच गए तो उनको खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन आने का प्लान तात्पुरता मतलब तब तक कैंसिल कर दिया है, बाद में आएंगे वो। तो अभी कहाँ पर है वो, तो जगन्नाथपुरी चले गए वो। तो सीधे वहीं से वृंदावन पहुंचते ही पैदल निकले वो जगन्नाथपुरी जाने के लिए। नहीं सॉरी, उन्होंने सुना कि वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए, अपने भाई कहाँ चले गए उनको ढूंढने के लिए वो चले गए, तो ये दक्षिण भारत में पहुंचे। तब तक चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करके वृंदावन पहुंच गए, तो ये वो दक्षिण भारत से फिर चल के भाग भाग के पूरा पैदल नंगे पैर वृंदावन पहुंचे, तब उनको खबर मिलेगी अभी अभी 2 महीना वृंदावन में रहकर चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद चले गए हैं। तो तुरंत रातों रात नंगे पैर इलाहाबाद की ओर चलने वाले थे, निश्चय कर लिया कल जाना है, तो महाप्रभु चैतन्य उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में ही रहो, मेरी इच्छा ये है कि आप यही रहो। तो फिर थोड़े शांत हो गए, वृंदावन में रह गए। उसके बाद जगन्नाथपुरी जाने का भी उनका दिल था, लेकिन महाप्रभु ने बोला आप रहो यहाँ पर। तो तब वो वृंदावन पूरा अप्रकट था, सब जंगल था, बिल्कुल सब स्थान लुप्त हो गए थे। तो जंगल में अकेले भटका करते थे, भगवान का नाम लेते पुकारते हुए, आंसू बहाते हुए मन मन में भटकते थे। तो फिर एक दिन भटकते भटकते छत्रवन में आए, छत्रवन यानी आज का छाता। देखो मुझे अभी ये बात याद आ रही है, हमारे पास ना बरसाने में छाता के बहुत स्टाफ मेंबर है, उसमें एक स्टाफ मेंबर बहुत चुस्त है। तो वो मैंने बोला कि एक काम करो आपके लिए, मेरे को खाली एक ही मैं आपको काम देता हूँ, आपके छाता गांव की कथा जो है कृष्ण भगवान की लीला वो मुझे आपको सुनाना है आगे, ओनली वन वर्क। तो बेचारा 6 महीने तक सब जगह सबको पूछता रहा गांव में, बुजुर्गों को पूछा, माँ को पूछा, पिताजी को पूछा, बड़े बूढ़ों को पूछा, लेकिन छत्रवन की कहानी मुझे बता नहीं पाया हो। सोच सकते हैं वृंदावन में छत्रवन छाता है, सब ब्रजवासी हैं, लेकिन उसके गांव में वो किसी से भी पूछकर छत्रवन की कहानी नहीं प्राप्त कर सका। तो बोला प्रभु जी मैं हार गया अभी, तो मैंने उसको छत्रवन की कहानी सुनाई, एक नहीं कई कथा है छत्रवन की। इसको क्या कहते हैं, दुर्भाग्य कहते हैं। इतने पवित्र भूमि पर जन्म लेने के बाद भी अपने घर के, अब मैं आगे उसको मथुरा की कथा नहीं पूछी, मैंने तो उसके घर के गांव की कथा पूछी, फिर भी नहीं बता पाया। एनीवेज लोकनाथ गोस्वामी महाराज वहां पहुंचे, तो वहां पर एक गांव है उमराव, उमरानों का गांव है, उधर रहे। तो संत लोगों ने बहुत उनको सत्कार किया, बोला आप और कहीं मत जाओ यहीं रहो आप, तो वहीं रह गए वो। तो उमराव गांव में एक किशोरी कुंड है, वहां पर राधा रानी का एक कुंड है, तो वहां पर वो भजन कर रहे थे। उनके मन में ऐसी इच्छा हो रही थी मुझे भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है, लेकिन मैं कभी कहाँ से विग्रह लाऊंगा। अचानक एक सुंदर बालक वहां पर आया और उसने एक छोटे छोटे राधा और कृष्ण के विग्रह उसको दे दिए और देकर तुरंत वो गायब हो गया, क्योंकि वो मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि उनका सौंदर्य देख के बहुत ही बहुत भाव विभोर हो गए। वो भाव विभोरता के अंदर वो लड़का निकल गया, लेकिन उनको ध्यान में ये भी आया था कि लड़का भी बहुत सुंदर था, कहाँ गया लड़का, नहीं मिला। हाथ में उनके राधा कृष्ण के छोटे विग्रह हैं अभी, और क्या करते हैं विग्रह, स्माइल देते हैं तुरंत उनको। मुझे अभी भी ये बात जब भी सोचता हूँ ना, मुझे बड़ा आनंद आता है कि भगवान जब वो विचार कर रहे थे अभी क्या करूँ कैसे करूँ, तो भगवान हंस देते हैं। उनके मूर्ति के नीचे जो है ना आसन जिसपे भगवान खड़े रहते हैं, उधर लिखा था राधा विनोद, जहाँ आपके सामने राधा विनोद, तो समझ गए कि राधा विनोद नाम है इनका। वो हंस पड़े और बोले लोकनाथ जी से कि मैं आज से आपके साथ ही रहूँगा, आप जहाँ ले जाओगे वहाँ जाऊँगा, जो खिलाओगे वो खाऊंगा, जो पहनाओगे वो पहनूंगा। बोले मैं तो साधु हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो भी आपसे बने वो मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। राधा विनोद जी ये आपके सामने विराजमान। तो राधा विनोद जी के लिए उन्होंने पत्ते इकट्ठा करके कई प्रकार के व्यंजन बनाए, उनके लिए कुटिया छोटी सी बनाई, अपने हाथ से उनके लिए वस्त्र बुने, और मांग मांग कर जो लेके आते थे वो उनको खिलाते थे। बड़ा आनंद का समय था उनका। मैंने एक कथा पहले भी सुनी थी कि किशोरी कुंड में जब वो बैठे थे तो वो किशोरी कुंड के पानी से ऐसे अपने आप प्रकट होकर उनके हाथ में आ गए, ऐसा भी मैंने पढ़ा है एक जगह पर। कोई बात नहीं, वो तो अद्भुत तरीके से आए, और रात में स्वप्न दिया भगवान ने उनको, कहा कि मैं स्वयं आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे विग्रहों को लेकर आपके पास आया था। तो फूट फूट कर रोए वो रात को, और फिर लोगों ने उनको विनती किया कि नहीं हमारे गांव में आप मंदिर बना के रहो, हमारे गांव में मंदिर बनाएंगे आपके ठाकुर जी का, आप हमारे गांव में रहो। लेकिन वो बोले नहीं, मैं तो साधु हूँ, मुझे जगह जगह जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से वस्त्र मांग के लोगों से लाए और अपने हाथ से उन्होंने एक थैली सिलाया, एक पिछवी सिलाया, और वो उसमें ठाकुर जी को रखते थे और गले में थैली लटकाते थे और लेके घूमते थे। यही मंदिर था उनका। ये ठाकुर जी जो आपके सामने बैठे हैं राधा विनोदी लाल, ये हमारे लोकनाथ जी महाराज के गले में थैली वाले मंदिर में बैठकर पूरे ब्रज में घुमा करते थे। देखो इनको कितने भक्त पर प्रेम करते हैं। अरे वो उनको महल नहीं चाहिए, उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, उनको पंच पकवान नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, वो भाव के भूखे हैं। इसलिए वो उनके थैली वेके वाले मंदिर में लेके घूमते रहे। उसके बाद में फिर वो वृंदावन आए, उनको रूप गोस्वामी जी ने बुलाया। एक सुंदर कथा मैं बताना भूल गया आपको, जब वो नवद्वीप से निकल रहे थे ना, तो वहाँ पर भूगर्भ गोस्वामी भी थे, इनके बच्चे मित्र थे वो लोकनाथ जी के। तो भूगर्भ गोस्वामी ने कहा कि अरे लोकनाथ तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, महाप्रभु के सामने ही चर्चा होगी, मैं तुम्हारे संग को छोड़ नहीं पाऊंगा तुम जाओगे तो। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा लोकनाथ के ऊपर जो प्रेम है वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कि आप भी इनके साथ वृंदावन चले जाओ। भक्तों को जब एक दूसरे पर प्रेम करते हुए भगवान देखते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। प्रभुपाद जी भी जाते समय बोल के गए, इफ यू लव मी प्लीज कोऑपरेट विथ वन अनदर, अगर आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो एक दूसरे से सहयोग करो, एक दूसरे पर प्रेम रखो। रूप गोस्वामी को स्वप्न आया है ना कि मैं इस टील में हूँ, आया ना स्वप्न, मैंने बताया ना कहानी आपको कि इस टील के अंदर मैं हूँ जहाँ पर गाय दूध देती है। तो लोकनाथ तो रूप गोस्वामी ब्रजवासियों के पास गए, बोला कि चलो उनको खुदाई करनी है। अगर उनका उन ब्रजवासियों के साथ में अगर प्रेम का रिश्ता नहीं होता तो क्या लोग आते क्या, आपको टाइम नहीं बाप खेती में काम करना, आप जाओ अपना अपना करो, आपको आदेश दिया आप जाओ, ऐसा बोलते ना स्वार्थी लोग। जब आप अपने नेबर के पास गए, बोले प्रभु जी मेरा घर में कल बेटे का सगाई है, आपको एक कुर्सी चाहिए, आपका थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, आप हेल्प करो। नेबर क्या बोलेगा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे काम पे जाना है। अगर प्रेम वाला होगा, रिश्ते वाला, नाते वाला, अच्छा फ्रेंड होगा तो वो आएगा, छुट्टी लेके आएगा। सब कुछ डिपेंड होता है रिलेशनशिप के ऊपर, आपका रिश्ता कैसा है घर के लोगों के साथ और बाहर के लोगों के साथ में, उस प्रकार से आपको प्रतिसाद मिलता है। तो भूगर्भ गोस्वामी का और लोकनाथ गोस्वामी का मित्रत्व देखकर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ और उनको भी आदेश दिया आप भी जाओ। तो ये दोनों एक साथ में घूमते थे ब्रज में। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पहले ही ये ब्रज में आए थे। महाप्रभु ने कहा था कि आप आगे जाकर रूप सनातन को भी मिलोगे, उनके संग में आप रहना। तो यथावकाश रूप गोस्वामी वहां पर पहुंचे, मैंने आपको कथा बताई ऑलरेडी, और फिर उनके आदेश से वो वृंदावन में आए। और वृंदावन में जमुना किनारे में उन्होंने राधा विनोद जी को एक मंदिर में मंदिर बनाकर वहां पर रखा, जो आज भी वहां पर गोकुलानंद जी के मंदिर से प्रसिद्ध है, लेकिन राधा विनोदी लाल का मूर्ति भी वहां पर ही है जमुना किनारे केशी घाट के पास में। तो यथावकाश उनके एक खितुड़ी ग्राम, वो भी बंगाल में है, उधर एक राजपुत्र थे, राजा के पुत्र नरोत्तम, उनका जन्म होने के पहले चैतन्य महाप्रभु उस पद्मा नदी जो उनके गांव में है वहां पर गए थे, और वहां पर अचानक खड़े होकर भक्तों के साथ में बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो सब लोग बोलने, नरोत्तम कौन है, हमारे बीच नरोत्तम तो कोई नहीं है, किसको पुकार रहे महाप्रभु, इतना भाव विभोर होकर इतना प्रेम से पुकार रहे। तो जब भाव विभोरता शांत हो गए तो उन्हें पूछा कि कौन है नरोत्तम, तो मेरा परम भक्त है, ये मंजरी का अवतार है, वो आगे जाकर भविष्य में आएगा। तो पद्मा नदी जो है ना, वो व्यक्ति देवी जो है ना पद्मा नदी, वो देवी बनकर आ गया थे, महाराज क्या आ गया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारी नदी में अभी स्नान करूंगा, हाँ थोड़ा सा मेरा हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो सारा प्रेम मैं अभी तुम्हारे जल में छोड़ने वाला हूं, तुमको वो संभाल के रखना है। और जब मेरा भक्त नरोत्तम आपके गांव में जन्म लेगा और आपके यहां पर स्नान करने आएगा, तो वो प्रेम उसके हृदय में आपको डाल देना है। इमेजिन कितना बढ़िया भक्त होगा वो। स्वयं परम भगवान जो प्रेम बांटने को आए हैं, वो प्रेम उसके लिए छोड़ के जा रहे हैं। उनको पता है कि जब वो जन्म लेगा तब तक मैं तो जा चुका होता, हो गया, मतलब जाऊंगा मैं उस समय तक, नहीं रहूंगा। तो मेरा प्रेम जो है कृष्ण प्रेम, उसके हृदय में मैं प्रस्थापित करना चाहता हूँ। यथावकाश नरोत्तम का जन्म हुआ, बचपन से ही वो भगवान के विषय में बहुत मग्न हुआ करते थे। पद्मा नदी में आए तो पद्मा नदी में स्नान करते ही वो भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर गए। इतना प्रेम उनके अंदर प्रवेश कर गया भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ, तो एकदम भाव विभोर हो गए, वो अपने आप को संभल नहीं पाए। तो चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट हो गए उस समय, वो गले लगाए उनको बहुत प्रेम से। कहते हैं 4 दिन तक बेहोश पड़े रहे वो नदी किनारे, इतना सा बालक। माता पिता ढूंढ रहे किधर गया नरोत्तम, सब जगह ढूंढा। तो बोले कोई लोग, हाँ मैंने उनको कुछ दिन पहले उधर नदी के पास जाते हुए देखा था। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उधर क्या करेगा वो, कहीं और गया होगा। लेकिन फिर बाद में कहीं भी नहीं मिला, तो नदी किनारे गए तो वहां पर वो बेहोश लड़का मिला उनको, नरोत्तम। फिर आगे जाकर वो नरोत्तम दास ठाकुर बने, भक्त बने। उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न दिया, बोला क्या वृंदावन चले जाओ हाँ, और लोकनाथ जी गोस्वामी महाराज से दीक्षा ले लो। तो राजपुत्र थे वो, राजा बनने के योग्य थे अगला हाँ, लेकिन सब छोड़ दिया उन्होंने। हमको लगता है क्या वन में इधर कोई है क्या साउंड के पास, कितनी बार बोलो सी, बिना बोले भी एक को दे रहे हो। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ हाँ, तो वो राजपुत्र थे, वो राजा बनने के अगले राजा बनने के वारस थे वो। हम लोग सोचते हैं कि जो जीवन में सब चीजों में हार जाते हैं ना, वो भक्त बन जाते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जो सब चीज में अयशस्वी बन जाते हैं, अनसक्सेसफुल, थोड़ा बड़ा दो, थोड़ा सा बड़ा दो, सब प्रयत्न में निराश हो जाते हैं, फिर जाके हरे कृष्ण में आ जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन हमारा इतिहास देखो आप, सब राजपुत्र थे, रघुनाथ दास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मिलियनियर्स, अरबोपति थे, वो सब छोड़ के वृंदावन में आए। ढूंढते हुए आए लोकनाथ जी कहां पर है, लोकनाथ जी उनको मिले, लेकिन जब वो आए वृंदावन में तो चैतन्य महाप्रभु जो चले गए थे अपना लीला समाप्त करके, भगवत धाम अपने धाम में चले गए थे। तो लोकनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए थे, क्योंकि एक तो महाप्रभु जी ने मुझे वृंदावन भेजा नवद्वीप से, और बाद में मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा था तो मुझे मना कर दिया कि आओ मत, उधर ही रहो। और जब वो वृंदावन आए थे तब मैं कहीं और था, अभी वो दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो इतने दुखी हो गए कि कुछ करने लायक रह नहीं गए, दिन भर रोते थे वो। उस समय नरोत्तम जी वहां पहुंच गए और बोला कि महाराज मुझे महाप्रभु जी की आज्ञा है कि आपसे दीक्षा लूं। तो बोले तुम इतने भाग्यवान हो कि स्वयं महाप्रभु जी ने तुमको दर्शन दिया है, स्वयं महाप्रभु स्वप्न में आके तुमको आदेश दे रहे हैं, और मैं महाप्रभु के तड़प रहा हूं, तो भाग्यवान तुम हो कि मैं हूं। तो मैं तुम्हें दीक्षा देने के योग्य नहीं हूं, तुम तो मुझसे अधिक भाग्यवान और श्रेष्ठ और प्रगत भक्त हो, तो आई कैन नॉट गिव इनिशिएशन टू यू। फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे तो महाप्रभु का आदेश है, तो मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, तो आप लीजिए। तुमने कहा कि टालने के लिए बताया कि आपको ना 10 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक साल में पूरा करना है, जो एकदम इम्पॉसिबल है, ताकि ये हो नहीं पाएगा तो फिर दीक्षा लेने का सवाल ही नहीं होगा। तो बोलेगे कि आपने बोला था वो किया नहीं, तो मैं कैसे दीक्षा दूंगा आपको। इन्होंने एक साल तक वो जप पूरा कर दिया। उसके बाद राजपुत्र जो है, वो राजपुत्र उनकी एकदम निम्न सेवा करने लगा, क्योंकि उनकी सेवा ही नहीं थी, कोई कोई इतने फकीर थे वो, इतने संन्यस्त विरक्त थे कि कोई सेवा ही नहीं उनके पास, तो क्या सेवा करना है। तो रात में जाकर अंधेरे में, सुबह जाकर जहां पर अपना शौच करते थे उसको जाकर साफ करते थे, उधर नया पानी लोटा रखते थे। देखो सेवा करने वाले को ना कोई बहाने की जरूरत नहीं है, सेवा जिसको करनी है उसको सेवा तो मिल ही जाती है, वो ढूंढ निकालता है, और जिसको नहीं करनी होती है वो 50 बहाने बताएगा, प्रभु जी देखो ऐसा है वैसा है, बीमार हूँ, छुट्टी नहीं मिलती है, वो नहीं आ सकता, बीमार हूँ मैं, ऐसा तकलीफ है, लोन है मेरे ऊपर, अभी नहीं कर सकता, 50 बहाने बताएगा। लेकिन इतना बड़ा राजपुत्र होने पर भी, जो महलों में रह चुका है, पंच पकवान खा चुका है, वो ब्रज में आकर किसी की डट्टी साफ कर रहा है। तो ये लोकनाथ जी जा रहे हैं सुबह सुबह, उनके शौच की जगह पर उनको साफ एकदम पूरा नया पानी रखा हुआ लोटे में रोज दिखाई पड़ता है। बोलो रात में इधर कौन सेवा करता है मेरी, वो भी ऐसी सेवा। तो एक दिन वो शौच जाने के बहाने गए और कहीं अलग जाके झाड़ी में छुप गए, पहले जाके मतलब रोज के समय के पहले जाकर झाड़ी में छुप गए और देख रहे हैं कि मेरी शौच की जगह पर कौन क्या कर रहे हैं। तो देखते कुछ देर के बाद में नरोत्तम जी आते हैं अंधेरे में रात में और आंखों में आंसू लेकर गुरु जी की टट्टी की जगह साफ करते हैं, नया जल लगे तुरंत भाग जाते हैं वहां से। तो अगले दिन दोबारा जब ये घटना होती है तो लोकनाथ जाके उनको पकड़ते हैं, नरोत्तम नरोत्तम क्यों कर रहे हो तुम ऐसे, तुम तो राजपुत्र हो, तुम तो राजघराने से हो, इतना ऊंचा पद है तुम्हारा और मुझ जैसे फकीर का तुम ऐसे निम्न सेवा कर रहे हो, भी शौच साफ कर रहे हो, उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। तो वो कह रहे महाराज मैंने आपसे सेवा पूछा, आपने सेवा नहीं दिया, मुझे सेवा करना है, गुरु की सेवा किए बिना मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, मुझे आपकी सेवा तो करनी है, मुझे आपका शिष्य बनना है गुरु महाराज, आप मुझे स्वीकार करो। वहीं के वहीं उनको दीक्षा दे दिया उन्होंने, बोलो ऑन द स्पॉट। इतना जिसका समर्पण है, इतना जो समर्पित है, इतना जो डेडिकेटेड है, उसको कौन छोड़ सकता है, खुद के लिए नहीं कि मेरा शिष्य ऐसा बनना चाहिए, ऐसा आदमी मेरा, ये नहीं कि भाई वो व्याकुल होगा अगर मैं दीक्षा नहीं दूंगा, टट्टी भी साफ कर रहा है मेरा वो। तो दीक्षा देकर नरोत्तम दास बना दिया उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ना महाप्रभु के चैत्य विरह में इतना व्याकुल हूं कि मैं आपको ना गुरु के रूप में ट्रेनिंग नहीं दे सकता, वो शिक्षा जो है ना ट्रेनिंग वो नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही बेकार हो गया हूँ, ऐसे खुद नम्रता से बोल रहे हैं। तो फिर वो जीव गोस्वामी के पास उनको भेजते हैं, अभी हम उनके मंदिर जाने वाले हैं जीव गोस्वामी के, हाँ लेकिन कथा यहीं पर करेंगे। तो जीव गोस्वामी के मंदिर भेज दिया, तो वहाँ पर उन्होंने श्यामानंद और श्रीनिवास इन दोनों के साथ रहकर जीव गोस्वामी के अंडर ट्रेनिंग लिया है। ऐसे हमारे भक्तों की ये चरित्र है, नहीं सुंदर भक्त हैं। और भाग्य क्या हमारा, हम सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं संप्रदाय के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी उनके संप्रदाय में हैं, हम उनसे संप्रदाय में दीक्षित हैं, हम उनसे संपर्क में हैं, तो इसलिए हमारा भी उनका संबंध है, वी आर कनेक्टेड टू सच बेस्ट पर्सनैलिटीज। और इनका चरित्र सुनना ही जीवन की परिपूर्णता है। तो ऐसे राधा विनोदी लाल, ये लोकनाथ जी का प्रेम जो था छोटी छोटी वस्तु में से स्वीकार करके स्वीकार करते थे। फिर जब ही वो औरंगजेब का आतंक हुआ तो विनोदी लाल जी जयपुर में आए, उनकी जगह पर और एक विनोदी लाल वहाँ पर बिठाए गए, वहाँ पर भी दर्शन है उनका, वहाँ पर तो बहुत सारे विग्रह हैं, वहाँ पर राजा विजय गोविंद है, उनकी कथा हम आपको कल बताएंगे गालता में, वहाँ पर राधा विनोदी लाल है, राधा विजय गोविंद है और चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के ऐसे खड़े हैं अकेले। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गांव में से 5 विग्रह प्रकट किए, एक ऐसा राइस का गोदाम था वहां पर कोई जाने को हिम्मत नहीं करता था, बहुत साफ विषैले वहां पर रहते थे, ऐसा ही जैसा कि भूत बंगला जैसा हो गया था वो। नरोत्तम जी ने वहां प्रवेश किया तो सारे सांप उनके अंदर जाते ही अपने आप बाहर चले गए, किसी ने फुत्कार नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सीधे बाहर चले गए। फिर उन्हें गोदाम को सब रिसर्च किया, उनको 5 ठाकुर जी के विग्रह मिले, उसमें से 2 जो है ना वो वृंदावन में है, एक है राधा ब्रजमोहन जो ज्ञान गुदड़ी में है जहाँ गोपी और उद्धव जी का मिलन हुआ था, उस जगह पर वो राधा ब्रजमोहन की मूर्ति है। नरोत्तम जी की हरिनाम चादर है, नरोत्तम जी जो पढ़ते थे वो श्रीमद् भागवतम है, नरोत्तम जी जो शालिग्राम शिलाओं को पूजा करते थे गोवर्धन शिला को, वो शिलाएं हैं और उनके द्वारा पूजित राधा ब्रजमोहन भी है, और वो एक मूर्ति गौरांग महाप्रभु की वो भी उन्होंने लाई हुई है, क्योंकि बड़े भाई चले गए सन्यासी बन गए तो छोटे भाई थे संतोष दत्त वो राजा बन गए, तो जब ये मूर्तियाँ प्रकट की उन्होंने तो अपने राजा भाई को उन्होंने बताया कि ये वृंदावन में ट्रांसपोर्ट करो, तो उन्होंने ये 5 विग्रह मेरे 2 विग्रह वृंदावन में ट्रांसपोर्ट किए, वो भी आज वृंदावन में विराजमान है। राधा विनोदी लाल भगवान की जय।